संयुक्त राष्ट्र समाचार के ताज़ा अंक के साथ मैं हूं महबूब खान। 29 नवंबर 2019 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता जताने के लिए मनाया गया विश्व दिवस। तापमान 3 डिग्री के उछाल की राह पर, जलवायु लक्ष्य हासिल हुए तब भी। दुनिया भर में 27 करोड़ प्रवासी घर भेजते हैं सैकड़ों अरब डॉलर। महिलाओं पर हिंसा एक बाधा है शांतिपूर्ण भविष्य के रास्ते में। भोपाल त्रासदी, रसायन उद्योगों से मानवाधिकारों का सम्मान करने की पुकार। एड्स का दैत्य निगल जाता है, हर दिन 320 बच्चों व किशोरों को। और कृषि में आंकड़ों के महत्व और जरूरत पर सुनिएगा एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिला दें कि आप मल्टीमीडिया सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, पता है news.un.org/hi। हमारा मोबाइल ऐप UN News Reader भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के बाईं ओर मेन्यू में आपको अन्य भाषाओं के साथ हिंदी भी नजर आएगी। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता और संप्रभुता प्राप्ति के लिए चल रहे संघर्ष में अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। बुधवार को न्यूयॉर्क में वरिष्ठ अधिकारियों ने राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। ये आधिकारिक तौर पर हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। 1977 में स्थापित ये दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक अरब देश और एक यहूदी देश में विभाजित करने का प्रस्ताव अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में कहा कि इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का हल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे दुसाध्य चुनौती है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि दो राष्ट्र के समाधान के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों और उनके समर्थकों से शांति प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया। दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों व लंबे समय से सहमत मापदंडों के पालन से यरूशलम को दोनों देशों की राजधानी के रूप में मान्यता देकर ही एक न्यायसंगत और टिकाऊ समाधान मिलेगा। महासचिव का कहना था कि सबसे पहले और सबसे बड़ी जरूरत है नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो नागरिक समाज और तमाम अन्य पक्ष इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच की खाई पाटने की कोशिश करते हैं उन्हें भी समर्थन देने की जरूरत है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि उनके लोगों ने 70 से अधिक वर्षों से त्रासदी और संकट झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अडिग हैं। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने अपने संदेश में कहा कि फिलिस्तीनी लोग निराशा और असफलताओं में बिताए दशकों के बावजूद एक बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करे। वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों और संकल्पों को हासिल भी कर लिया जाए तो भी दुनिया तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की राह पर आगे बढ़ रही है, जिसका मतलब होगा कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के और भी ज्यादा व्यापक व विनाशकारी प्रभाव होंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ये चेतावनी वार्षिक कार्बन अंतर रिपोर्ट में मंगलवार को जारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
ये आकलन दर्शाता है कि दुनिया को तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है तो अगले एक दशक के दौरान कार्बन उत्सर्जन में हर वर्ष 7.6% की गिरावट होना जरूरी है। अगर वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होती है तो हम जलवायु प्रभावों के ज्यादा और विनाशकारी नुकसान देख रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने भी ये अनुमान विभिन्न रिपोर्टों में पेश किए हैं। इनमें हाल के वर्षों में देखी गई गर्मी, लू, तूफान जैसे हालात शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2020 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देश अपने जलवायु संबंधी संकल्पों पर कार्रवाई तेज करने का वायदा करेंगे। UN एजेंसी की रिपोर्ट में सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए योगदान लक्ष्य 2020 तक बढ़ाने का आह्वान किया गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी जारी की है कि वातावरण में 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे मानवता की भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यूएन एजेंसी ने सरकारों से अपील की है कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने होंगे। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के महासचिव पेटरी टालस ने सोमवार को बताया,
वी हैव अगेन ब्रोकन रिकॉर्ड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस एंड वी हैव ऑलरेडी
कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता में हमने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हम 400 पार्ट्स प्रति मिलियन के स्तर को पहले ही पार कर चुके हैं, जिसे एक गंभीर स्तर माना गया था। वर्ष 2018 में गैस की मात्रा का स्तर 407.8 पार्ट्स प्रति मिलियन मापा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले साल की वृद्धि लगभग उतनी ही थी जितनी हम औसतन पिछले 10 सालों में देखते आ रहे हैं। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के प्रमुख पेटरी टालस, उन्होंने मीथेन के बढ़ते स्तर पर भी चिंता जताई। यूएन एजेंसी के बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में वातावरण में मीथेन की मात्रा 1869 पार्ट्स प्रति बिलियन पहुंच गई है, जो पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अगर जलवायु नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो वैश्विक उत्सर्जन में बढ़ोतरी वर्ष 2030 से आगे भी जारी रहने की आशंका है।
संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 27 करोड़ पहुंच गई है और सबसे पसंदीदा गंतव्य अब भी अमेरिका है, जहां लगभग 5 करोड़ 10 लाख प्रवासी हैं। ये प्रवासी हर साल लगभग 689 अरब डॉलर की रकम अपने मूल स्थानों को भेजते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी IOM की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा आंकड़ा दुनिया की आबादी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दर्शाता है। हालांकि ये 2 साल पहले प्रकाशित उसकी अंतिम रिपोर्ट के सांकेतिक स्तर से 0.1% की वृद्धि है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये आंकड़ा फिर भी दुनिया की आबादी का बहुत कम हिस्सा यानी लगभग 3.5% है। मतलब ये कि इसमें दुनिया की लगभग 96% आबादी शामिल नहीं है जो ये मानती है कि वो वहीं रह रही है जहां वो पैदा हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की लगभग आधी से भी ज़्यादा संख्या यानी करीब 14 करोड़ 10 लाख प्रवासी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारत से जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1.75 करोड़ है। उसके बाद मैक्सिको का नंबर है, जिसके प्रवासियों की संख्या 1.18 करोड़ है। 1.07 करोड़ प्रवासियों के साथ चीन का तीसरा नंबर है। महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा पीड़ितों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस मानवाधिकार हनन के अंत की पुकार लगाई है। बलात्कार को मानवाधिकारों का ऐसा एक गंभीर उल्लंघन करार दिया गया है जिसके लंबे समय के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
महिलाओं के प्रति हिंसा के आंकड़े इस विषय में एक कटु वास्तविकता को बयान करते हैं। करीब 33% महिलाओं व लड़कियों को जीवन में शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है और विश्व भर में 50% से ज्यादा महिलाओं की हत्या उनके संगी साथी या परिजन करते हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने इस दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा,
These abuses are among the world's most horrific, persistent and widespread human rights violations.
ये अत्याचार दुनिया के सबसे ज्यादा तकलीफ देह लगातार होने वाले और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हर 3 में से एक महिला प्रभावित होती है। इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई महिला हिंसा से प्रभावित है, आपके परिवार की कोई सदस्य, आपकी कामकाजी सहयोगी, कोई दोस्त, यहाँ तक कि आप खुद भी हो सकती हैं।
ये थे यूएन महासचिव के शब्द। महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक पीड़ा के स्वरूपों और उसके विनाशकारी नतीजों के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयास कर रहा है। अगले 2 वर्षों के लिए यूएन महासचिव की यूनाइट मुहिम के जरिए बलात्कार की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये पहल वर्ष 2008 में शुरू की गई थी, जिसके जरिए सार्वजनिक रूप से जागरूकता फैलाने के अलावा महिलाओं व लड़कियों के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए आवश्यक नीतियों व संसाधनों को सुनिश्चित कराने पर बल दिया जाता है। साथ ही वर्ष 1996 से महिलाओं के प्रति हिंसा के अंत के लिए एक यूएन ट्रस्ट फंड को 13 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। साथ ही यूरोपीय संघ व संयुक्त राष्ट्र की एक साझा पहल स्पॉटलाइट इनिशिएटिव नाइजीरिया सहित अन्य देशों में शुरू की गई है।
संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने भारत में भोपाल गैस त्रासदी के 35 साल पूरे होने पर रसायन निर्माताओं से अपनी जिम्मेदारी समझने और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। यूएन के विशेष रिपोर्टर बास्कुट तुनचुक ने कहा है कि स्वैच्छिक मानवाधिकार मानकों को अपनाने की प्रक्रिया में कमजोरियां निहित हैं और इसलिए मजबूत कानूनी विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
खतरनाक पदार्थों व कचरे के बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन मामलों के लिए यूएन के विशेष रिपोर्टर बास्कुट तुनचुक ने बताया कि भोपाल की गैस त्रासदी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कीटनाशक फैक्ट्री के दुष्प्रभावों के कारण दूषित जल और मिट्टी ने भोपाल की कई पीढ़ियों को गरिमा और विकास के साथ जीने के उनके अधिकार से रोका है। 2 दिसंबर 1984 की रात में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री में बेहद जहरीली गैस का रिसाव होने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि वर्ष 2030 तक रसायन उद्योग आकार में दोगुना हो जाएगा और इस वजह से मानवाधिकारों पर उसका खासा असर होने की आशंका भी बढ़ेगी। यूएन रिपोर्टर के मुताबिक केमिकल इंडस्ट्री की ओर से रिस्पॉन्सिबल केयर पहल को वर्ष 1986 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी के बाद रसायन निर्माताओं द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम करना था। लेकिन मामले दर्शाते हैं कि रसायन उद्योग जीवन और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में विफल रहा है और न ही वो नीतियां सही मायनों में लागू हो पाई हैं जिनका जिक्र व्यवसाय और मानवाधिकारों पर यूएन के दिशा निर्देशों में किया गया है।
दुनिया भर में हर साल हर दिन करीब 320 बच्चे और किशोर युवा एड्स से संबंधित बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने एचआईवी और एड्स के बारे में एक वैश्विक संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार साल 2018 में हर घंटा लगभग 13 बच्चों और युवाओं की जान एड्स की वजह से चली गई। एचआईवी एड्स के संक्रमण के इलाज के लिए समुचित चिकित्सा सेवाओं का अभाव और उसकी रोकथाम के सीमित प्रयासों की वजह से ज्यादा मौतें होती हैं। वर्ष 2018 में एचआईवी संक्रमण के साथ जीवन जीने वाले जन्म से 14 वर्ष की उम्र के 54% बच्चों को ही जीवन बचाने वाली चिकित्सा उपलब्ध हो पाई थी। इन बच्चों की संख्या लगभग 7,90,000 थी। ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि एचआईवी संक्रमण के साथ जीने वाले बच्चों को इलाज की सुविधाएं हासिल होने में क्षेत्रीय स्तर पर गहरी असमानता व्याप्त है। दक्षिण एशियाई देशों में इलाज की सबसे ज्यादा सुविधाएं हासिल हैं, जहां ये संख्या लगभग 91% है। उसके बाद मध्यपूर्व और उत्तर अफ्रीका है, जहाँ लगभग 73% मरीजों को इलाज की सेवाएँ मिलती हैं। टिकाऊ कृषि विकास और सतत खाद्य सुरक्षा व पोषण के लिए अच्छे निर्णय लिया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन कृषि संबंधित फैसलों के लिए प्रामाणिक आंकड़े होना भी आवश्यक है। इसी समस्या के समाधान पर चर्चा के लिए 8 से 21 नवंबर तक भारत की राजधानी दिल्ली में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि एजेंसी FAO, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला है। सांख्यिकी का कृषि में क्या महत्व है, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने बात की भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संस्थान में सलाहकार डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से।
किसान जब फसल बोता है तो उससे वो कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है और उसको उत्पादन करने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, जैसे उसको बीज, उच्च प्रकृति का बीज चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको समय पे पानी चाहिए आदि। तो हमें इन सब चीज़ों पे आंकड़े चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो किसान फसल बोने जा रहा है उसको उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हो, समय पे खाद उपलब्ध हो, और अगर सूखा पड़ रहा है, मॉइस्चर डिस्टेंस है, तो उसको नहर में पानी उपलब्ध हो। तो ये हमें सब समय पे पता होना चाहिए। दूसरा स्तर पे देखें तो किसान की क्या लागत आई, क्या उसको बाजार में उसका मिल रहा है, क्या कृषि उसके लिए लाभप्रद है कि नहीं है। अगर वो कृषि लाभप्रद नहीं होगी तो किसान खेती करना बंद कर देगा, ये दूसरा आर्थिक पहलू है उसका। तीसरा, किसान को क्या उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अपनी फसल का, वो बाजार में उसकी कितनी भागीदारी है, वो अपनी फसल किसको बेच रहा है, बिचौलियों को बेच रहा है या जहाँ पे उसको सबसे अधिक मूल्य मिल सकता है वहाँ बेच रहा है। तो ये इस पे भी आंकड़े हमें चाहिए और तुरंत चाहिए, यानी कि जब जिस समय चाहिए, जिस समय उसको निर्णय लेना है किसान को, उसी समय आंकड़े चाहिए। अब इसको अगर आप सामाजिक स्तर पर देखें तो ये देखा गया है कि जो भूख है या कुपोषण है वो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और ये एक विडंबना का विषय है कि जो किसान अन्न उत्पादन कर रहा है उसी के पास कुपोषण है। हमें कुपोषण के आंकड़े भी चाहिए और हमें जानने के लिए भी कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके भी आंकड़े चाहिए हमें। पर्यावरण के लिए अगर हम देखें तो ये देखें कि भाई अगर किसान ने जो फसल चक्र अपनाया हुआ है उससे पर्यावरण संरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि खेती सिर्फ आज के लिए नहीं है, खेती हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, वो चलती रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में खेती के उत्पादन की मांग और कई गुना बढ़ेगी। तो हमें अपने पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। पर्यावरण में जैसे कि खेती जो जमीन है भूमि की उर्वरक शक्ति कम ना होने पाए, ऐसा फसल चक्र किसानों को अपनाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए ताकि भूमिगत जल समाप्त ना हो जाए, या कहीं पे वाटर लॉगिंग ना हो, सैलिनिटी ना हो, रेगिस्तान ना बन जाए जमीन का। तो इन सब चीजों पे हमें आंकड़े चाहिए कृषि में।
तो जब ये आंकड़े आप इकट्ठे करते हैं, जब स्टैटिस्टिक्स डेटा मॉनिटरिंग होती है, इसमें कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं।
देखिए जैसे अगर भारत का उदाहरण लें तो यहाँ पे मेरा अंदाज है 14 करोड़ किसान परिवारों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसे किसान एग्रीकल्चर होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब कृषि में जो भारत में पैदा होता है उसमें 14 करोड़ लोग निर्णय लेते हैं। अब हम हर एक के लिए अलग अलग पूछना संभव नहीं है, तो हम इसके लिए सांख्यिकी विधियों का, सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि सैंपल बेसिस पे हम जल्दी से आंकड़े उत्पन्न कर सकें, हमें पता चल सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमारे आंकड़े रिलायबल हों और जब चाहिए हमें तब उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए हम तकनीक यूज करते हैं। चैलेंजेस जो इसमें आते हैं कि किसी किसी देश की परिस्थितियों के अनुसार हमारे पास मेथोडोलॉजी नहीं है, हम कैसे डेटा कलेक्ट करें और कैसे उसको समय से उपलब्ध कराएं। दूसरी डिफिकल्टी ये आती है कि डेटा जब हम फील्ड से कलेक्ट करने जाते हैं तो वो एक बहुत ही महंगा तरीका है, किसी को किसान के पास जाके पूछना पड़ता है और उसको प्रोसेस करना, फिर उसको निष्कर्ष निकालना, ये दूसरा चैलेंज है। और एक चैलेंज ये भी होता है कि एक मेथोडोलॉजी हर सिचुएशन में या हर देश में नहीं अप्लाई हो सकती।
SDGs से जुड़े जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में सांख्यिकी किस तरह मदद करती है?
देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे बड़ा SDG जिसके लिए वो लीड कर रहा है वो है SDG 2 जीरो हंगर। इसके अलावा 5-7 और SDGs हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं या पावर्टी से संबंधित हैं, जिसमें FAO का कार्य उनको प्रभावित करता है। इन सभी SDGs के लिए जब ये SDG बनाए गए थे तो MDG से अंतर इसमें ये है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो इसके पहले थे से अंतर ये है कि SDG अपने साथ में एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ले गया है, वो साथ ही साथ तैयार किया गया है। तो उस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में करीब 236 इंडिकेटर हैं और टारगेट्स हैं हर एक के फिक्स करे गए हैं। इन सभी इंडिकेटर को बनाने के लिए हमारी सांख्यिकी व्यवस्थाओं की और जो सांख्यिकी नतीजे निकल के आते हैं, रिजल्ट अनुमान निकल के आते हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।